प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 7 अगस्त 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं सौरभ मिश्रा, आप खलीलाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, अजय सिंह आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, अनिल कुमार आपका गांव है बेला बगान जिला देवघर झारखंड से हैं, रोहित कुमार आपका गांव है नरहट जिला सिवान बिहार, और कृपाल कुशवाहा आपका गांव है बानमोर जिला मुरैना मध्य प्रदेश। तो सौरभ, अजय, अनिल, रोहित और कृपाल आप 5 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको मुख्य विषय के बारे में बताऊं, मैं एक बात कहना चाहूंगा। कल मैंने मुख्य विषय के तहत प्रश्नों की समझ पर आपसे चर्चा की थी और एक प्रश्न मैंने पढ़कर सुनाया था, उसकी आप समझ कैसे विकसित करेंगे उसकी थोड़ी सी मैंने व्याख्या की। मुझे सच पूछिए तो कल के मेल पढ़कर के बेहद खुशी हुई और खुशी से भी ज्यादा अधिक मैं कहना चाहूंगा कि मुझे आत्मसंतोष का बोध हुआ। आप कहेंगे सर आत्मसंतोष का बोध क्यों हुआ? आत्मसंतोष का बोध इसलिए हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को खासकर सिविल सर्विस की तैयारी करने के बारे में जो बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे कैसे। देखिए मुझे इसमें कोई भ्रम नहीं, मैं आपकी सिविल सर्विस की तैयारी करा नहीं रहा हूं, इसी से तैयारी नहीं हो जाएगी, हाँ थोड़ी सी मदद आपको मिल जाएगी। कैसे करेंगे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं और यही मेरा मकसद है। तो कल के मेल पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद आई एम ऑन राइट ट्रैक, यानी कि मैं शायद सही रास्ते पर हूं। और मेरे जो प्रिय श्रोता हैं उनमें से एक वर्ग इतना संवेदनशील है जो इन चीजों को समझ रहा है, ग्रहण कर रहा है, और अगर वो समझ रहा है और ग्रहण कर रहा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन वह परिणाम भी देगा। कल आप लोगों ने जिस तरीके से मेल लिखे और उस मेल में इस बात का अनुरोध किया कि सर जो प्रश्नों की समझ वाला जो सिलसिला है इसे प्लीज बनाए रखा जाए और सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर के बारे में भी बताया जाए कि प्रश्नों की समझ कैसे विकसित की जानी चाहिए। इनफैक्ट सच पूछे मित्रों तो मैं इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि 1-2 इस तरह के मेल आ जाएंगे, लेकिन इतनी संख्या होगी इस तरह के मेलों की यह मेरे सच पूछे तो उम्मीद से परे थी। इसका मतलब यह है कि अब आप लोग शायद इस बात को रियलाइज करने लगे हैं कि नहीं, केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, केवल तथ्यों को रट लेना और जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा जरूरी यह है कि उन्हें हम कैसे जानें और जानने के बाद उनका कैसे हम इस्तेमाल करें। तो मित्रों आप लोगों ने जो अनुरोध किया है वह सर माथे पर, और अब मैं सोमवार को जो खासकर हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में बात करते हैं उसके तहत प्रश्नों की समझ वाले ही सीरीज को आप यूं कह लीजिए कि आगे बढ़ाऊंगा। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार और ईश्वर से प्रार्थना कि वह इसी तरह से आप लोगों के अंदर वह विवेक पैदा करे जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के प्रति आपके दिमाग में एक सही जो अवधारणा होनी चाहिए उस अवधारणा को स्थापित कर सके। तो फ्रेंड्स आज के अब मुख्य विषय को के बारे में मैं बता दूं, आज हम लोग पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने सुना कि कल पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने संबंधी विधेयक को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया है। लेकिन आइए पहले थोड़ी सी दूसरी खबरों को हम देख लेते हैं। कल 1-2 और भी विधेयक पारित किए गए हैं। एक आपने खासकर आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो अपराधों को रोकने के लिए जो विधेयक दायर किया गया था, आपने देखा कि लोकसभा ने उसे पारित कर दिया है, वो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी वो पारित हो जाएगा। और आपको मालूम है कि इस विधेयक को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, विधेयक को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी फ्रेंड्स क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च के 3rd वीक या कुछ ऐसे में ही अपने एक फैसले में कहा था कि नियम अभी तक का जो कानून है वो ये है कि अगर किसी पर अत्याचार होता है, अगर वो व्यक्ति सुप्रीम आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से है, उस पर कोई अत्याचार हुआ है, तो जिसने अत्याचार किया है उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, उसकी तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट थोड़ी सी जांच परख होनी चाहिए, फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो तुरंत गिरफ्तारी पर एक तरीके से उसने रोक लगा दी थी। और इसको लेकर के फिर जो इससे जुड़े हुए संगठन थे और यहां तक कि सभी राजनीतिक दल भी ऑलमोस्ट इसका विरोध कर रहे थे कि इससे सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से जो है इस वर्ग के लोगों पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो सक्षम लोग हैं अगर वो अत्याचार करेंगे तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका नाजायज फायदा उठा सकते हैं। तो सरकार ने फिर एश्योर किया था कि नहीं, हम उसे पूर्व स्थिति में ले आएंगे। और अब विधेयक लोकसभा से पारित हो गया तो उसमें पूर्व स्थिति को ही बहाल करने की बात कही गई है। राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा और जैसे राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होंगे वह कानून फिर से बन जाएगा। इसी तरह से मित्रों, एक कानून के बारे में और आपने न्यूज में सुना, वो है आपराधिक कानून संशोधन विधेयक, आपराधिक कानून संशोधन विधेयक। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जितने भी अभी विधेयक की चर्चा कर रहा हूं, जैसे आपराधिक कानून संशोधन विधेयक, तो आप ये मत समझिए कि ये एक सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा एग्जामिनेशन में कि आपराधिक कानून विधेयक के क्या क्या प्रावधान है। नॉट एट ऑल। दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो यह है कि आप इसका इस्तेमाल कंटेंट के रूप में दूसरे तरीके से करें, जैसे कि आपराधिक कानून संशोधन विधेयक जो आया है ये दुष्कर्म के आरोपियों के लिए आया है कि जो दुष्कर्म के जो आरोपी होते हैं उनकी सजा का प्रावधान काफी कड़ा कर दिया जाए। इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, बस यही आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहला तो यह है कि अगर 12 वर्ष तक या उससे कम उम्र की किसी लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है तो उसके लिए बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है, 20 साल की सजा, जिसे मृत्यु तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब मृत्यु दंड में भी, मतलब अनंत काल तक, आप कह लीजिए कि उसके आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा प्रोविजन यह किया गया है जो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा प्रोविजन है कि इसकी जो कार्यवाही है सब है ये 2 महीने में पूरी कर ली जाएगी, मतलब ये नहीं कि साहब वो टल रहा है। और मुझे लगता है कि आपने महसूस किया होगा कि अब जो खासकर कानून बन रहे हैं उसमें टाइम बाउंड किया जा रहा है, टाइम कि अब इसके मामले इतने समय में निपटा दिए जाने चाहिए, 6 महीने में निपट जाने चाहिए, 2 महीने में निपट जाने चाहिए। मित्रों, जब तक ये नहीं कहें कर किया जाएगा, सच पूछिए तो जो सक्षम लोग हैं वो इस कानून का, या कह लीजिए कि पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था को अपना गुलाम बना करके रखेगी, वो तो 10-10, 20-20 साल तक केस चलाते रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है कि 2 महीने का समय निर्धारित कर दिया गया है। एक बात और कही गई कि इसके लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे न्यायालय हैं उनके ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा है, तो विशेष अदालतें होंगी ताकि मामले का जल्दी निपटारा हो सके। और यह भी कहा गया कि थाने में फॉरेंसिक जांच की व्यवस्था की जाएगी और हर जिले में फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं भी बनाई जाएंगी ताकि जांच परख तुरंत हो जाए, यानी कि यहां से लेकर के और भेजा जा रहा है और फिर आ रहा है और इस सब में लिपापोती हो रही, तो ये बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं। तो अब आप देखिए कि महिलाओं पर अत्याचार, दुष्कर्म, इन सब मामलों पर अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है जिसका सीधा संबंध इस संशोधन विधेयक से नहीं है तो एक कंटेंट के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कंटेंट हुआ। दूसरा, इससे जो प्रश्न बनेगा वो इस तरह का सब एक आलोचनात्मक प्रश्न बन सकता है कि यह दुष्कर्म के मामलों को रोकने में कितना प्रभावशाली सिद्ध होगा, आप और क्या उपाय सुझाना चाहेंगे, इस तरह के प्रश्न भी इससे पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, न्यूज में एक लाइन की खबर थी कि हमारे जो खेल मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि अब स्कूलों में अगले साल से खेल का एक पीरियड अनिवार्य किया जाएगा। मुझे लगता है कि खेलों के विकास के लिए यह घोषणा एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है। ये भी आपको कंटेंट के रूप में आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि खेल से एक प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग जब पढ़ते थे 1970 के आसपास में, तब बकायदे एक पीरियड खेल का होता था और हम लोग खेलते ही खेलते थे। अब गांव में तो आप जानते हैं फुटबॉल और इसके बाद वॉलीबॉल और फिर कबड्डी, ये 2-3 खेल ही होते हैं, लेकिन बकायदे उसका पीरियड लगता था और उसमें खेलना ही होता था। एक अच्छी बात है। अखबारों में आपने 35A के बारे में पढ़ा होगा, आज के अखबारों में 35A जो कश्मीर पर लागू होता है, और इसका संबंध इस बात से है कि कश्मीर आउटसाइडर, जो कश्मीर का नाम में नहीं रह रहा है आउटसाइडर, कोई भी कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकता। अभी इस पर सुनवाई चल रही है, एक संस्था है, उस संस्था ने अभी सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से जनहित याचिका दायर की है, वी द सिटीजन्स नाम की संस्था है, और उस पर अभी सुनवाई हो रही है, जिसको लेकर के आपने न्यूज में सुना कि कश्मीर में बंद वगैरह का भी आह्वान किया गया है, क्योंकि कश्मीर वाले विरोध कर रहे हैं कि ये जो अनुच्छेद है इस अनुच्छेद को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आपके ध्यान के लिए मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपके ध्यान में रहनी चाहिए 35A। मित्रों, अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। और वह मुख्य विषय है पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना। इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, आज थोड़ी सी बात करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर डेफिनेटली आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे, आप उससे कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन मैं जो बहुत ही इसके सारभूत जो बातें हैं इसकी मैं वो आपको बताना चाहूंगा। एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि 123वां ये संशोधन है, 123वां, और इसके माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। 1993 में ये आयोग बना था, लेकिन इसे शेड्यूल जैसे अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, उस तरह का इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। तो अब क्या फर्क पड़ेगा संवैधानिक दर्जा देने से? दो तीन चीजें बस आपके दिमाग में मुख्य रूप से रहनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पहला तो यह है कि जब संवैधानिक दर्जा किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है तो उसके पास एक प्रकार से कह लीजिए टू सम एक्सटेंट जो सिविल न्यायालय हैं उसके बराबर की शक्तियां, उसको अधिकार मिल जाते हैं। जो सिविल न्यायालय सुनवाई कर सकता है, सिविल न्यायालय सजा दे सकता है, सिविल न्यायालय गवाही ले सकता है, सिविल न्यायालय डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है, ये सारे तभी तो सिविल न्यायालय मतलब कोई फैसला देगा। तो वो अधिकार इस आयोग को भी मिल जाएंगे। अब तक आयोग क्या करता था? देखिए, अब तक आयोग की का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। सच पूछे तो ये एक प्रकार से रिकमेंडिंग अथॉरिटी था। रिकमेंडिंग मतलब जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित जो होंगे कि किस जाति को शामिल किया जाए और उनकी क्या समस्या, इस पर वो विचार करेगा, विचार करके वो सौंप देगा, इसके बाद सरकार फैसला करेगी नहीं करेगी। तो केवल एक यूं कह लीजिए कि एक थिंक टैंक की तरह था, लेकिन अब वो थिंक टैंक नहीं हो गया, अब वो एक्शन में आ गया है, मतलब उसको अधिकार मिल गए हैं, बकायदे वो एक्शन ले सकता है। कैसे लेगा? जैसे कि इसमें थोड़ी सी नई व्यवस्थाएं भी की गई हैं कि अब वो जो आयोग की जो सिफारिशों पर राज्यपाल से सलाह नहीं लिया जाएगा, राज्यों से सलाह लिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में अगर कोई नीति बनेगी तो उस नीति के बनने में भी आयोग मदद करेगा। पहले क्या था कि वो सिर्फ मशविरा देता था, केवल सलाह देता था, यानी यूं कह लीजिए कि पिछड़ा वर्ग आयोग के उत्थान में भी अब इसकी भूमिका होगी। और फिर आयोग खुद अपने बारे में नियम कानून बनाएगा कि वो कैसे काम करेगा, उसकी क्या क्या शक्तियां होंगी, इसके बारे में भी इसको अधिकार मिल जाएंगे। और पिछड़ी जातियों में से किसे केंद्रीय सूची में शामिल किया जाए, इसका अधिकार भी अब पिछड़ा वर्ग आयोग को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आयोग संवैधानिक दर्जा मिलने के कारण एक प्रकार से एक शक्तिशाली, सही मायने में एक संगठन होगा जो एक्शन ले सकता है, जो काम कर सकता है। अदरवाइज एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि आयोग था लेकिन बिना दांत का था या बिना नाखून के था, जिसके पास इनफैक्ट सही मायने में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी। तो ये मैंने आपको बहुत ही मूलभूत बातें बताई हैं, आगे जब आर्टिकल्स वगैरह आएंगे तब आपको चीजें और पता लगेंगी। फ्रेंड्स, ये जहां तक न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप अपने ढंग से देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उसी में से कुछ मेल मुझे मिले हैं जिन्होंने बुक्स के बारे में जानना चाहे कि सर जनरल स्टडीज की तैयारी हम किन किताबों से करें। मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए बकायदे YouTube पर मेरा प्रोग्राम अवेलेबल है और उसमें मैंने किताबों की एक लंबी फेहरिस्त दी है और बहुत ही डिटेल में दी हुई है, तो प्लीज आप वो प्रोग्राम देख लें, उसमें आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो मित्रों, कुछ ईमेल लिखने वाले मित्रों के मैं यहां नाम लेना चाहूंगा, और वो हैं साहिल भाटिया फरीदाबाद हरियाणा से, माधव सिंह गया बिहार से, ध्रुव रोहित सबधानी, इंदर कुमियाल, मिंटू मधुबनी बिहार से, धर्मेंद्र सिंह ठाकुर और दीपक झा ललितपुर उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।